फूलों में परवाज।
सलाम अलैकुम।
अलैकुम सलाम।
तुम परेशान ना हो उम्मीद, बिल्कुल परेशान ना हो। अभी आपके अब्बा का क्या हाल है?
फिलहाल कोमा में है।
फिर भी खुदा का शुक्र है कि जिंदा हैं। क्या उनसे मिलने की इजाजत देंगे?
नहीं।
मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हूँ। इतने दिन हो गए हैं हमारी दोस्ती को, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ एक गैर की तरह सलूक करते हैं। अगर मैं फोन नहीं करता तो आप भी मुझे खबर नहीं देते, है ना?
हमें खुद ही 2-3 घंटे पहले पता चला था।
तुम्हें मुझे इससे पहले बताना चाहिए था। जानते हो ना, मैं इस घर का एक रुकन बनने वाला हूँ। आज के बाद जो भी इस घर में मसला दरपेश होगा वो मेरा भी मसला होगा।
ये वक्त गिलाव शिकवा करने का नहीं है मौसी साहब। अगर आप हमारी मदद ही करना चाहते हैं तो फिलहाल बेहतर ये होगा कि अब्बा के लिए दुआ करिए।
आतिफा साहिबा, दरखास्त है कि आप खुद को परेशान न करें। मैं अभी जाकर उनके डॉक्टर से बात करके आता हूँ। वादा करता हूँ कि जैसे ही आपके वालिद होश में आ जाएंगे वैसे ही उन्हें बाहर ले जाने का बंदोबस्त कर दूंगा। यकीनन वहाँ बेहतर इलाज होगा।
मौजी साहब, जनाब कुछ देर आपसे गुफ्तगू करनी है।
जनाब मूसवी टेलीफोन, जनाब मूसवी टेलीफोन।
मैं भी आता हूँ।
पता है रामिन साहब की कौन सी बात मुझे पसंद है? यही कि वो हमेशा मदद के लिए पहुंच जाया करते हैं।
क्या आज आपने लुत्फी साहब को कोई फोन नहीं किया था? कोई मुलाकात नहीं हुई थी?
बिल्कुल नहीं।
कोई दोस्त या ऐसा कोई जान पहचान का जिसकी आपसे दुश्मनी हो या कोशिश की हो कि आपको नुकसान पहुंचाए? क्या आप जानते हैं किसी ऐसे को?
मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं।
क्या आपको यकीन है कि अब तक जो कुछ मुझसे और मेरे घर वालों से कहा है वो पूरे तौर से सच्चा?
आप मुझ पर शक कर रहे हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा राज है जो हमें ना बताया हो, या उससे आपको खौफ महसूस होता हो?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
मौजी साहब, क्या मैं आपसे दरख्वास्त कर सकता हूँ कि पहले अच्छी तरह से सोचें और फिर मुझे सही और दुरुस्त जवाब दें?
अर्जुमंदी साहब, क्या आप इस वक्त मुझसे तफ्तीश कर रहे हैं?
नहीं नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से आपको एक मशवरा देना चाहता था कि कम से कम मुझसे सच बोलिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बुरा होगा।
मेरे ख्याल में आप गलतफहमी का शिकार हो गए हैं।
हाँ, हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगा है तो मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ कीजिएगा। हेलो,
जो एड्रेस मैंने आपको दिया था उस पर गए थे? देखा जो मैंने कहा था वो सच निकला ना?
माफ कीजिएगा, आप कौन है?
क्या आप लुत्फी साहब नहीं हैं?
क्यों नहीं, मैं हूँ।
तो फिर आज ही हम मिले थे ना?
हाँ, बिल्कुल ठीक है, मुझे याद आ गया।
तय ये था कि आप अगली मुलाकात पर पैसों का बंदोबस्त करेंगे।
मैं लुत्फी साहब से ही बात कर रहा हूँ ना?
हाँ ये ठीक है, लेकिन वो रकम जो आपने मुझे बताई वो मेरे लिए कुछ ज्यादा है।
लेकिन जो चीज मैं आपको बताऊंगा उसकी कीमत इन पैसों से बहुत ज्यादा है।
ठीक है, कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। अच्छा, कल हमारी मुलाकात कहाँ होगी?
वहीं जहाँ आज हम मिले थे।
मैं ये कह रहा था कि हम कहीं और मिले तो अच्छा होगा, जैसे कि मेरे प्रेस में कैसा रहेगा, साथ में बैठकर चाय भी पी लेंगे।
नहीं, वहीं जहां मैंने कहा।
ठीक है, तो एक बार फिर मुझे अपना एड्रेस बता दें, मेरा हाफिजा ठीक से काम नहीं कर रहा है।
आपका हाफिजा बिल्कुल ठीक है।
मैं ही कुछ ज्यादा बेवकूफ हूँ?
क्या समझ रखा है, बहुत होशियार हो।
तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं लुत्फी साहब के डॉक्टर से उनके बारे में बात करके आऊं।
आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर डाली, अब हम यहाँ पर हैं, बाकी सब संभाल लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उनकी सेहत की ज्यादा फिक्र हो रही है।
मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपने इस कदर जहमत उठाकर मुझे और मेरे घर वालों को शर्मिंदा कर दिया। अब जाकर आराम कर लीजिए तो बेहतर होगा।
जैसा आप चाहें। तो जहमत करके मेरी तरफ से आप उम्मीद भाई और आतिफा साहिबा से खुदा हाफिजी कर लीजिएगा। शब बखैर,
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
कौन?
कहाँ हो, तुम्हें 100 दफा फोन कर चुका हूँ।
तुमने आज लुत्फी से बात की थी?
तुमसे क्या मतलब,
तुम तफ्तीशकार हो।
तुम्हें पता है कि क्या हुआ है?
जो भी हो, लगता है कि तुम बुरी तरह से फंसे हुए हो।
क्योंकि तुम्हारी आवाज से खौफ बरस रहा है।
वो मारा जा चुका है अहमक।
क्या क्या कहा?
उसकी लाश गाड़ी में मिली है, और चूंकि आखिरी मुलाकात तुमसे ही हुई थी इसलिए पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। तुम बच के रहना, कहीं पकड़े ना जाओ।
ये तो सही नहीं है।
मैंने तो कुछ नहीं किया।
लेकिन ये साबित कैसे करोगे?
सारे सबूत और हालात तुम्हारे खिलाफ हैं।
ये तुमने ही किया है।
मुझे यकीन है।
पता है जो आदमी 1 घंटा पहले तुमसे मिलना चाह रहा था वो कौन था?
इस केस का इन्वेस्टिगेटर। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस मुल्क से कब का भाग गया होता।
देखो रामीन, अगर मैं पकड़ा गया तो सबसे पहले तुम्हें ही पकड़वाऊंगा।
मैंने भी तुम्हें इसीलिए बताया है कि तुम कहीं फंस ना जाओ।
कहां से पता चले कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो?
तुम्हें तो जासूसी की महारत है ना, जाओ एक चक्कर लगा के आ जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा।
ठीक है।
अगर मैं मुल्क से बाहर जाना चाहूं तो तुम कितनी रकम मुझे उधार दे सकते?
कीमत पर तो बातचीत हो जाएगी, ये बताओ कि मिले कहां।
पता नहीं, जरा ठहरो, अच्छा वो शॉपिंग सेंटर था जहाँ हम अक्सर मिला करते थे।
उसी बिल्डिंग की सीढ़ियों के पास मैं खड़ा मिलूंगा।
सलाम वालेकुम।
सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम।
सलाम वालेकुम।
आपने यहाँ आने की जहमत क्यों उठाई नसरीन साहिबा?
कोई जहमत नहीं है, हमारा फर्ज था ये। इंशाल्लाह की बला इस घर से दूर रहे।
तुम्हें कैसे इत्तला मिली मेहताब बहन?
उम्मीद की आज एडिक्शन सेंटर पर क्लास थी, मैंने फोन किया पता करो कि वो वहाँ गया है या नहीं, तब मुझे पता चला।
सलाम कुरुश, कैसे हो? ठीक हो? नहीं, ठीक नहीं हो। तुम्हें क्या हुआ है लड़के, तुम सोचकर काम क्यों नहीं करते? सुना है तुम्हारे सारे प्रोग्राम दरहम बरहम हो गए। कुरुश, आरश की तरफ से होशियार रहो, अब वो हद से ज्यादा दखल देने लगा है। तुम तो नहीं चाहते कि इतने साल सब्र करने के बाद एक बच्चा तुम्हारा काम बिगाड़ दे, है ना? तो फिर होश में आ जाओ, क्योंकि अगर देर की तो फिर बहुत देर हो जाएगी। तो जल्दी करो, जल्दी करो कुरुश।
क्या ये फोन तुमने खुद ही चेक नहीं किए थे?
क्यों नहीं जनाब, कई फोन पब्लिक बूथ से किए गए थे, बाकी फोन या तो कस्टमर ने किए थे या फिर घर से था।
कल रात किसी ने लुत्फी साहब के मोबाइल पर फोन किया था, उसे समझ में नहीं आया कि वो मुझसे बात कर रहा है, उसने किसी पब्लिक बूथ फोन का इस्तेमाल किया था। उसकी बातों से लग रहा था कि लुत्फी साहब के साथ जो कुछ हुआ है उसका उसे कुछ नहीं पता। इस कॉल की दो तीन चीजें शक में डालती हैं। सबसे अहम चीज जिसका मुझे पता चला ये थी कि वो किसी के बारे में कोई अहम मालूमात लुत्फी साहब को देना चाहता था। इसका इम्कान है कि इसी वजह से वो गुस्से में आ गए और उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया हो, लेकिन एक तरफ उनके सर पर चोट का निशान है, उसकी कोई वजह समझ नहीं आ रही।
शायद अटैक से पहले तबीयत बिगड़ गई हो, सर किसी चीज से टकरा गया हो।
बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, एक इंजेक्शन का निशान भी उनके बाजू पर है। बस एक बात का अफसोस है कि उन्हें जब अस्पताल लाया गया तो उनका ठीक से मुआयना नहीं किया गया, इसीलिए पता नहीं चल पाया कि वो निशान अस्पताल जाने से पहले का है या फिर अस्पताल में इंजेक्शन लगाने का निशान है। खून की रिपोर्ट भी कुछ नहीं बता रही है।
खुशी की बात यह है कि इनका दिमाग काम कर रहा है और अपने अतराफ में पेश आने वाली चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब बोलने की और जिस्मानी ताकत इनमें नहीं रही है।
डॉक्टर साहब, क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे?
फिजियोथेरेपी और बातचीत से जिस्म को कुछ बेहतर तो किया जा सकता है, जैसा कि मैंने कहा कुछ बेहतर किया जा सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है और 2-3 साल से पहले तब्दीली बहुत मुश्किल है।
मुझसे तो कुछ नहीं कहते हैं,
लेकिन इस तरह से देखते हैं जैसे मैं ही उनके स्ट्रोक का बाइस हूँ।
उम्मीद मैं यहाँ पर बात नहीं कर सकती, खुदा के लिए ऐसा ना सोचो।
खुद को क्यों परेशान कर रहे हो?
मैं उनको हक देता हूँ मेहताब, मैंने अब्बा को बहुत ज्यादा परेशान किया।
जब उनसे बहस करने की बात याद आती है तो शर्म के मारे जी चाहते हैं कि अपना सर दीवार से टकरा दूं।
ये बताओ, क्या कोई गोली खाई है तुमने?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
मुझे सच सच बताओ तुम।
वो गोलियां तो नहीं,
सिर्फ जुकाम और सरदर्द की कुछ गोलियां ली थी।
कितनी बार तुमसे कह चुकी हूँ घर में अकेले मत रहा करो, ये सब सोचने के बजाय जाओ जाकर प्रेस खोलो, वहाँ मशीनें चलाओ। कब से बंद पड़ी हैं, इस तरह कब तक चलता रहेगा?
मेरे ख्याल में वो आ गए, खुदा हाफिज।
ठीक है, अब मुझे सुकून मिला, अब तुम अकेलेपन से निकल आए।
बहुत बहुत मुबारक हो। अम्मी और मैं आज या कल तुमसे मिलने आएंगे और तुम्हारा हाल दरियाफ्त करेंगे।
खुदा हाफिज।
ठीक है, सलाम कहना, खुदा हाफिज।
देखिए, मैंने पिछले 1-2 हफ्ते के दौरान ब्रेन हेमरेज के ताज़ा तरीन इलाज के बारे में पता लगाया है। मेरा एक दोस्त जोहानिसबर्ग में रहता है, उसने मुझे एक आदमी का पता बताया जिनका नाम प्रोफेसर योहानसन है। उनका ख्याल है कि इस बीमारी में ये इलाज वाकई एक मौजजे के मानिंद है। जब मैंने उन्हें लुत्फी साहब की सूरत हाल बताई तो उन्होंने कहा कि वो उन्हें पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, लेकिन इस हद तक कि वो चल फिर सकें और अपने रोज़मर्रा के काम कर सकें।
लेकिन इसका खर्चा तो बहुत ज़्यादा होगा मोइसी साहब।
आपको खर्चे के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, पूरे इलाज का खर्चा मैं उठाऊंगा। बस जिस चीज़ की इस वक्त मुझे ज़रूरत है वो है शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट, ताकि मैं मेडिकल वीज़ा ले सकूं।
बहुत बहुत शुक्रिया मौजी साहब, लेकिन क्या गारंटी कि जैसा आप कह रहे हैं उस तरह ठीक हो जाएंगे?
मेरे ख्याल से खाली बैठकर उनके इलाज के लिए कुछ ना कर पाना ये कोई अकलमंदी का काम नहीं है। बहरहाल इस सिलसिले में हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके पास कोई बेहतर रास्ता है तो हमें भी बताइए। अगर आप लोग समझते हैं कि मेरा आप पर कोई एहसान है तो फिर कोई बात नहीं, जब भी ये पैसे आपके पास हों तो मुझे किस्तों में वापस कर दीजिएगा बस। लेकिन मेरी तरफ से कोई एहसान नहीं है, लुत्फी साहब मेरे वालिद जैसे हैं।
खुदा पर ईमान रखना चाहिए रजा साहब, बिलाखिर पैसों का इंतजाम तो हो ही जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस बेच सकते हैं या कहीं से कर्ज ले सकते हैं, आखिर रजा साहब की सेहत इन सब से बेशकीमती है, दुनिया की तमाम चीजों से कहीं ऊपर।
तो अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं कल जाकर उनके सफर की तैयारियां शुरू कर देता हूं ताकि इलाज जल्दी हो सके। लेकिन एक सवाल है और वो ये कि मेरे साथ इस सफर में कौन जाने वाला है?
मैं तो जा सकता हूं अगर मेरी मिलिट्री सर्विस का मसला हल हो जाए तो।
वक्त कितना लगेगा?
तकरीबन 3 महीने या फिर इससे भी ज्यादा।
मुझे नहीं लगता कि ऑफिस से मुझे इतनी लंबी छुट्टी मिल पाएगी।
और आतिफा साहिबा भी तो हमारे साथ नहीं आ सकती हैं। बहरहाल इनको भी तो वालिद की इजाजत लेनी होगी, और ये भी कि हम आपस में महरम भी नहीं हैं। आप लोगों को मेरा एक मशवरा है। प्रोग्राम ये था कि लुत्फी साहब आतिफा साहिबा से मेरे रिश्ते की दरखास्त का जवाब देंगे, पर अफसोस कि ये हो नहीं पाया। अब अगर आपको कोई मुखालिफत ना हो और मेरे बारे में भी आपकी राय मुस्बत हो, तो आपसे इस बारे में दरख्वास्त करूंगा कि फिलहाल इनके साथ मेरा निकाह पढ़ा दिया जाए, ताकि हम लोग एक साथ सफर कर सकें। फिर इंशाल्लाह शादी के रसूमात और जश्न लुत्फी साहब के मुकम्मल सेहतमंद होने और ईरान लौटने के बाद मना लेंगे। ये सब रस्में तो होती रहेंगी। वैसे ये सब इस सूरत में है कि आतिफा साहिबा का मेरी तरफ रुझान हो। तो आपकी क्या राय है? मैं लुत्फी साहब के मेडिकल के पेपर्स की बुनियाद पर 2-3 दिन में कानूनी निकाह की इजाजत कोर्ट से हासिल कर सकता हूं। अगर कोई बात है तो मुझे बता दीजिए। इस काम के जरिए हम इस कैफियत से बाहर निकल सकते हैं। अलबत्ता मैं लुत्फी साहब के लिए कह रहा हूं।
बहुत बहुत शुक्रिया, हम आज रात मशवरा करके आपको इत्तला दे देंगे।
ठीक है, जैसा आप लोग मुनासिब समझें।
अब्बा जान।
आतिफा बेटी, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मुझे तुम्हारे इन साहब पर शक है।
ये बात कहाँ से पता? जिसने अब्बा को फोन किया था वो झूठ नहीं बोल रहा था।
ठीक है, मुझे 1-2 हफ्ते का वक्त दो, मैं हर चीज का पता लगा लूंगा।
मैंने सोच लिया मामू जान, अब्बा की खातिर ही सही मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। उनकी जान खतरे में है।
मतलब ये मामू जान की रट बेमाना है।
इसके बाद अब्बा की खिदमत तो हमारी ही जिम्मेदारी है ना। आप तो हमेशा मदद के लिए हमारे पास नहीं होंगे, हमें और उम्मीद को ही सब सहना होगा। लेकिन मैं इस हालत में अब्बा को तड़पते हुए नहीं देख सकती मामू जान। जब भी मेरी नजर उन पर पड़ती है तो मेरा कलेजा सदमे से फटने लगता है।
इस तरह तो तुम्हें पूरी उम्र मुसीबत बर्दाश्त करनी पड़ेगी लड़की।
किसने कहा मैं खुद को मुसीबत में डाल रही हूँ?
रामीन साहब हर लिहाज से एक अच्छे और काबिल इंसान हैं। अगर आप में से किसी ने भी उनमें कोई बुराई देखी हो तो बता दे, हम फिर कुछ और सोचें।
ठीक है, देखो आतिफा बेटी, एक बात गौर से सुनो। अगर तुमने कोई काम अपनी मर्जी से हमें बताए बगैर किया तो फिर हमें भूल जाना।
इस वक्त जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो अब्बा की सेहत है।
ठीक है, अब जबकि अपने बड़ों का तुम्हें कोई ख्याल नहीं तो जो जी चाहे करो, बस इतना याद रखना कि ऐसी कुछ बातें हैं जिनसे तुम बेखबर हो। चलो इलाम, अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए।
बेहतर होगा कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना करो, आखिर तुम्हारे मामू तुम्हारा भला ही चाहेंगे।
हमारे पास और कोई चारा नहीं है मोमानी।
इंशाल्लाह सदा सुहागन रहो। खुदा हाफिज।
तुम्हें उनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी।
ठीक है, जाओ और दादा जान को शिराज फोन करो और उनसे बताओ कि हमारा क्या हल हुआ है। कह दो मेरे निकाह में शरीक होने के लिए फौरन यहाँ आ जाए, समझे?
¶¶ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی وقال الصادق علیہ السلام من تزوج فقد احرز نصف دینہ فلیتق اللہ بالنصف الآخر. اس مبارک اور پر برکت موقع پر اور ان مبارک دنوں میں انشاءاللہ کہ یہ نکاح جو جناب رامین معزی صاحب اور عاطفہ لطفی صاحبہ کے بیچ ہو رہا ہے مبارک ہو اور یہ لوگ اپنے بزرگوں کے سائے تلے خوش و خرم رہیں. اور
معاف کیجیے گا کوئی بات ہے. کیا ہوا محمود بیٹے؟ شاید اس کو درد ہو رہا ہے, جاؤ ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ.
شاید پیاس لگ رہی ہو انہیں. امید بھائی, مولانا صاحب آپ جاری رکھیں.
جی ہاں, خوشی سے مالا مال اور پر شفقت زندگی بزرگوں کے سائے تلے گزاریں.
معافی چاہتا ہوں, معاف کیجیے گا, معاف کیجیے گا, معاف کیجیے گا.
محترمہ عالیہ عاطفہ لطفی صاحبہ, کیا آپ اور جناب رامین معزی صاحب کے بیچ ایک قرآن مجید, ایک
رمضان
اور
گرمی کی وجہ سے آپ کے ہونٹ سوکھ گئے ہوں
گے, نکاح دائم کرنے کے لیے آپ مجھے وکیل مقرر کرتی ہیں؟ کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں آپ دونوں کا نکاح پڑھاؤں؟ میں ایک بار پھر سے پوچھتا ہوں, کیا آپ مجھے اپنا وکیل مقرر کرتی ہیں؟
اپنے والد اور دادا کی اجازت سے. جی ہاں.
مبارک ہو انشاءاللہ. آپ زوجہ کے سرپرست کی حیثیت سے یہاں دستخط کریں.
کہاں پر؟
یہاں پہ, یہاں دستخط کریں. اب دولہا اور دلہن صاحبہ یہاں تشریف لا کر دستخط کر دیں. یہاں دستخط کر دیجئے دولے میاں.
السلام علیکم, صبح خیر.
وعلیکم السلام, صبح خیر, کیا حال ہے؟
ٹھیک ہے بھائی, اکیلے اکیلے بیٹھے ناشتہ کر رہے ہو؟
اصل میں پریکٹس کے لیے گیا تھا, بھوک سے بری حالت تھی. انڈا تلا ہے, بیٹھو, تمہارے لیے بھی بنایا ہے. आतिफ अभी तक सो रही है?
नहीं, बेचारी रात को बिल्कुल ही नहीं सो पाती, हर घंटे उठ जाती है कि कहीं अब्बा को कोई परेशानी ना हो।
उसे चुप से आराम करने दो, चाय पियोगे? आज अब्बा के नाश्ते की जहमत तुमको उठानी होगी, दरअसल मुझे नफसियाती मशवरे के लिए जाना होता है।
अच्छा बताओ कि इन क्लासों का कोई असर भी हुआ है?
बहुत मुफीद है, डॉक्टर साहिद का कहना है कि अगर मैंने एक महीना और इसी तरह जारी रखा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा।
ज्यादा संजीदगी से मत लेना।
क्या मतलब?
यानी एक बार बदपरहेजी करते ही तमाम जहमतें बेकार हो जाएंगी।
लेकिन मैं बहुत मोहतात हूं
भाई। उम्मीद तुम्हें बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, शजरे ममनुआ इंसानों के लिए हमेशा पुरकशिश होता है।
ठीक है, मैं निकलता हूँ।
जाओ, अपना ख्याल रखना, मेहताब साहिबा को भी मेरा सलाम कह देना।
खुदा हाफिज।
लुत्फी साहब की तबीयत कैसी है? हाल चाल ठीक है? खुद को ज्यादा परेशान ना करो लुत्फी साहब, कोई तुम्हारी बात नहीं समझेगा। ये लो, दूध लाया हूं तुम्हारे लिए, पी लो। पी लो ना, पियो। अपनी शर्ट गंदी कर दी, क्या कहूं तुझे। आतिफा को डांटने के लिए बुलाऊं? क्यों, पियो ना।
तुम्हारे अब्बा कैसे हैं?
कोई खास तब्दीली नहीं आई है, इसलिए कि वो अपनी बात हमें ठीक तरह से समझा नहीं पाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं।
यानी उनके इशारे भी तुम समझ नहीं पाते हो?
क्यों नहीं, लेकिन जितनी उम्मीद उनको है उतनी नहीं। काश अगर वो लिख सकते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं हो।
क्यों नहीं कर पाते?
डॉक्टरों का कहना है कि उनके दिमाग और बदन के बाकी हिस्सों का राबेता कट गया है, यानी किसी चीज के बारे में सोचते हैं और जो चीज जबान पर लाते हैं वो चीज समझ से बाहर होती है।
उन्हें बाहर कब ले जाना है?
उनका वीजा तैयार नहीं है, रामिन साहब भी इसी काम में लगे हैं, आतिफा ने भी जिद पकड़ ली है कि प्रेस को बेचना है।
लेकिन क्यों?
उसका कहना है कि अब्बा के इलाज के लिए जरूरी है।
तुम नहीं समझते कि आतिफा कुछ जल्दबाजी कर रही है?
वो कैसे?
मेरे ख्याल में वो अपने अब्बा से मोहब्बत की वजह से सिर्फ अपने जज्बात में आकर ऐसा फैसला ले रही है।
मुझ में तो हिम्मत नहीं है कि उससे कुछ कहूँ, वो इन सब मुसीबतों का जिम्मेदार मुझे समझती है। और मामू रजा ने भी आतिफा की शादी के मुखालिफत के बाद हमसे राबेता तोड़ लिया है।
क्या तुम चाहते हो कि मैं आतिफा से बात करूं?
मैं तो नहीं समझता कि वो तुम्हारी बात सुनेगी।
लेकिन आजमाने में हर्ज ही क्या है?
ठीक है, अंदर तो चलो।
रियल एस्टेट एजेंट को फोन किया उम्मीद?
नहीं, मैं भूल गया था।
उन्होंने खुद फोन किया था और कहा कि प्रेस के लिए खरीदार मिल गया है। मैंने भी कह दिया कि हम नहीं बेचेंगे।
तुमने क्यों ऐसी बात कही?
क्योंकि इस काम में कई महीने लग सकते हैं। सबसे पहले तो अदालत जाओ, मुख्तार नामा लो, इस काम में जहमत बहुत ज्यादा है।
तो तुम्हें बताओ फिर हम क्या करें?
मैं तो अभी जिंदा हूं ना, इस काम का तमाम खर्चा मैं बर्दाश्त करूंगा, मैं पहले भी कह चुका हूं।
ये तो बताओ आखिर इतने सारे पैसे लाओगे कहां से?
अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो मेरे अकाउंट में इतने पैसे जरूर होंगे।
क्या मैं तुम्हारा बैंक बैलेंस जान सकती हूँ? क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए मेरे शौहर के पास कितने पैसे हैं।
अब छोड़ो भी, सुकून से खाना खा लो।
आतिफा मैडम, अगर मेरे पास नहीं भी हुआ तो मैं खाला से कर्ज ले सकता हूँ।
रामीन, उनका नाम भी मेरे सामने मत लेना, मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है। रामीन, तुम नाराज मत होना, लेकिन बहुत ही बेमुरव्वत हैं वो लोग। ना तो निकाह में शामिल हुए और ना ही अब्बा की खैरियत के लिए कोई फोन किया।
मैंने आपकी खातिर उनसे अपना रिश्ता तोड़ लिया है।
तो फिर ठीक है, उनसे पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे भी होगा हम हफ्ते के आखिर तक प्रेस भेज देंगे और पैसे हासिल कर लेंगे। आज मैं आपके लिए सूप बनाकर लाई हूँ अब्बा जान, इसे पीकर देखिए और बताइए मजा कैसा हुआ है। क्या हुआ अब्बा, आप पी क्यों नहीं रहे? क्या आपको बाहर ले चलूं? क्या हुआ अब्बा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। आपको किसी चीज की जरूरत है? कहीं दर्द हो रहा है अब्बा जान? अब्बा आप कहें तो उम्मीद को बुला लाऊं। रामीन को? रामीन, क्या अब्बा, क्या हुआ, काम है उससे? अब्बा जान, आप कोशिश करें कि मुझे लिखकर बताएं। मैं इस तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप कोशिश करके देखिए।